हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 43, 44, 45 एंड 46। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने। यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति येस्तवी वेदी सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यम् सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दिवाय तस्मै नमः। चैवानरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अभी हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध का अध्याय 18 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो हमने देखा कि सबसे पहले एक बार महाराज परीक्षित जा रहे थे वन में शिकार करने के लिए। एक हिरण का पीछा करते करते शमीक मुनि के आश्रम में गए और बहुत याचना करने के उपरांत भी जब मुनि ने महाराज परीक्षित का कोई स्वागत नहीं किया, उन्हें पानी भी नहीं पिलाया, बिठाया भी नहीं, मधुर वचन से बात भी नहीं की, तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया और उसके बाद उन्होंने फर्श पे पड़े हुए एक मृतक सर्प को अपने तीर से उठाकर उनके कंधे पर रख दिया और फिर अपने महल में जाने के उपरांत उन्हें पश्चाताप होने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने जब सुना कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा करके गए हैं राजा, तो उसी समय अपने दूसरे जो उनके मित्र बच्चे थे उनको उन बालकों के सामने दिखाने के लिए अपनी शक्ति और तेज दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि अब देखना इस राजा के साथ मैं क्या करता हूँ। तो अपने बचकाना अवस्था में उन्होंने पानी उठाया और पानी उठा के क्रोध से बढ़कर कौशिक नदी के जल को स्पर्श करके उसने ऋषि को उस राजा को यह श्राप दे दिया कि सात दिन के उपरांत तक्षक सर्प इस राजा को मार डालेगा, डंसकर मार डालेगा, क्योंकि ये राजा अपने आप को समझता क्या है, क्षत्रिय है तो हम ब्राह्मणों के घर के कुत्तों की तरह रखवाली करते हैं और ये हमारे ही घर में आकर हमारे ही बर्तन में खाने की इच्छा कर रहा था, इसको ऐसा करना चाहिए। द्रंक्षति कुलंगारम, ये तो कुल अंगार है, अपने जो कुल है उसका सबसे नीच व्यक्ति है, तो इसको इसी तरह से अपने अपराध का दंड मिलना चाहिए। ऐसे कहकर श्रृंगी ऋषि अपने पिता के उस कुटिया में गए जहां पर शमीक मुनि के गले में मृतक सर्प पड़ा हुआ था। उसको देखकर श्रृंगी ऋषि जोर जोर से रोने लगे और उस रुदन को जोर जोर से मुक्त कंठ से रोने लगे और जब शमीक ऋषि ने उनका इतना रुदन जोर जोर का सुना तो उनके नेत्र धीरे धीरे उन्होंने खोले। उन्होंने देखा गले में मृतक सर्प पड़ा हुआ है, परंतु उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसको निकाल के फेंक दिया और पूछा अपने पुत्र से, क्या हो बेटा, तुम इतना जोर जोर से रो रहे क्यों हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ बोला है, किसी ने तुमको कोई क्षति पहुंचाई है, कोई हानि की है, तुम इतना जोर से क्यों रो रहे हो। जब ऋषि ने इतना पूछा तब उसके पुत्र ने बताया कि पिताजी, एक राजा ने आपके साथ ऐसा किया था और उसके बदले में आप फिक्र मत करो, मैंने उनको बहुत बड़ा दंड दे दिया। 7 दिन के बाद उसको तक्षक सर्प जो है वो डस जाएगा। जब पिताजी ने ऐसा सुना तभी उनको बहुत ज्यादा दुख होने लगा और कहने लगे, निशम्य शक्तम अर्हतम नरदेहम सब ब्राह्मणों नात्मजम अभ्यनंदता। उसने अपने पुत्र को अभिनंदन नहीं किया बल्कि कहने लगा, अहो बताहो महदे कृतम, आपने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इतना बड़ा पाप किया है, परंतु राजा की इतनी बड़ी गलती, अल्पीय मसी द्रोह उरुद्र दमोधृत, छोटा सा अपराध राजा ने किया और उसकी बदली में आपने इतना बड़ा उसको श्राप दे दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि राजा जो होता है वो सामान्य लोगों की तरह नहीं होता है, जिस तरह से सामान्य लोगों को उनके अपराधों का दंड दिया जाता है, राजा को कभी भी हमें इस तरह से दंड नहीं देना होता है, क्योंकि राजा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो वो दंडनीय नहीं होता है, वो अपराध उसके अपराध इस तरह से दंड देने के योग्य नहीं होते। नवे नृभिर्नरदेवं पराक्षम, वेदों में राजा के विषय में बताया गया है कि राजा जब अपने कर्तव्य को पूरा करता है तो उसका अधिकार भी बहुत बड़ा होता है, बल्कि हमने अपराध किया कि उनको उनके योग्य मान सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, तो सम्मा तुमर्हस्य विपक्क बुद्धि, कि तुम तो बहुत ज्यादा अपरिपक्व बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि जो है सही तरह से विकसित नहीं हुई है, तुम्हें पता नहीं है कि इतना अच्छा राज्य कर रहे थे महाराजा परीक्षित और आपने इतनी छोटी सी गलती की, उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके उपरांत मुनि शमीक मुनि अपने पुत्र को कहते हैं, श्लोक नंबर 43 मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी रथांग पाणा वयमंगलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूत वक्षण। अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी रथांग पाणा वयमंगलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूथ वक्षणात्। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांग पाणा वयमंगलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूत वक्षणात्। शब्दार्थ, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, अलक्ष्य मतलब समाप्त किए जाने से, नरदेव इतना सुंदर राजा है, जब राजा की समाप्ति हो जाएगी या ये जब राजा की हत्या हो जाएगी तब, क्योंकि ये कैसा राजा, रथांग पाणा वयमंगलोक, रथांग पाणा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, भगवान जो है उनके प्रतिनिधि राजा, ऐसे राजा जो एक छत्र राजा होते हैं ना, जो सारी पृथ्वी के अकेले राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। रथांग पाणो अयम अंग, हे बालक इस संसार का इतना सुंदर राजा था, अभी जब ये चले जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, तदा ही चोर प्रचुरो विनक्षति, तदा ही निश्चित ही तुरंत उसी टाइम पे चोर चुक्के बहुत ज्यादा प्रचुरो अत्यधिक बढ़ जाएंगे, विनक्षति, और जो सारे शुद्ध लोग होंगे उन सबको विनाश कर देंगे। सब जगह पर तुम्हें दिखेगा कि चोर तदा ही चोर प्रचुरो विनक्षति, सबका विनाश करते जाएंगे, सबको परास्त करते जाएंगे। अरक्षमाणो, किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, सब लोग असुरक्षित हो जाएंगे, अरक्षक, किसी की रक्षा नहीं होगी। और अविरुद्ध बद, अरुरुद्ध मतलब जिस तरह से मेमने और जिस तरह बिखरे हुए मेमनों पर शेर झपटते ना, उसी तरह से ये चोर चुक्के जितने भी ये अपराधी लोग हैं वो सब इस अपनी जो भी ये प्रजा होगी उसको विनाश कर देंगे, उसको हानि पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे। क्योंकि अरक्षमाणम, कोई सुरक्षा करने वाला तो होगा ही नहीं। अभी इतने अच्छे हमारे राजा हैं, उनके जाने के बाद तो सारी जो प्रजा है उसको बहुत कष्ट मिलेगा। अनुवाद देखिए, हे बालक, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान एक छत्र राज्य के स्थानापन्न होते हैं, और जब यह राज्य समाप्त हो जाता है तो सारा संसार चोरों से पूरित हो जाता है, और तुरंत ही तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को परास्त कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का स्थानापन्न होता है, यानी एक क्षत्र राजा, जैसे महाराजा परीक्षित थे जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो वो जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए ईश्वर के गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा ही नहीं किसी को भी राजा बना दिया जाता था, पहले जो राजा जो क्षत्रिय होते थे उनको पूरी शिक्षा दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको किस तरह से अपनी प्रजा का हित करना है, किस तरह से राज्य करना है, किस तरह से लोगों को दुखों से या फिर जो कष्ट है उनसे किस तरह से बचाना है। तो ये महाराजा परीक्षित पूरी तरह से एक अच्छे राजा थे जो कि भगवान के प्रतिनिधि थे। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान नियोजित करते थे वास्तव में अच्छे राजा को। ये भगवान ने क्या किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। भगवान चाहते थे कि राज्य जो है वो युधिष्ठिर महाराज को मिले। युधिष्ठिर महाराज के बाद दूसरे राजा किसको बनना था, परीक्षित महाराज को बनना था, ये भगवान की व्यवस्था थी। इसीलिए परीक्षित महाराज को गर्भ में भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया, क्योंकि यही वो राजा हैं जो कि भारतवर्ष पर राज्य करने के योग्य हैं। तो ये सारी भगवान की योजना है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बन जाता है। एक राजा प्लस उसके अंदर भक्ति हो, संस्कृति हो, तभी वो एक पूर्ण राजा होता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व न हो श्रेष्ठ होती है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी माशाल्लाह और जमहूरियत, यानी कि एक तो होता है व्यक्तिगत राजसत्ता और दूसरा होता है प्रजातंत्र। जैसे प्रजातंत्र क्या होता है, हम जैसे वोट देते हैं उसके बाद वोटिंग के बाद एक गवर्नमेंट जो है वो आती है, लेकिन वो जो व्यक्तिगत राजा है, भले ही वो व्यक्तिगत राजसत्ता है लेकिन वो भगवान का भक्त है, युद्ध कौशल में प्रशिक्षित है, प्लस एक संस्कृत राजा है, तो वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे व्यक्तिगत राजसत्ता जिसको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, पूरी तरह से बताया जाता है कि किस तरह से तुम्हें राज्य करना है, किस तरह से वो प्रजा का हित करने के लिए कार्य करता है, ऐसा व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से जिसमें कोई प्रशिक्षण नहीं तथा उत्तरदायित्व न हो, कोई प्रशिक्षण आज जो राजा जिसको हम बनाते हैं, जो गवर्नमेंट आती है, उसको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है कि शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि किस अपराध की कौन सी सजा देनी चाहिए, उनको कुछ नहीं खबर होती है, बस आते हैं और सिर्फ उनका एक ही काम होता है कि इन 5 सालों के अंदर में कितना ज्यादा से ज्यादा इस कंट्री को मैं कैसे लूटू, ज्यादा से ज्यादा अपने खजाने बढ़ू, और फिर बाद में तो वैसे भी कौन मुझे वोट देगा, है ना, ऐसा लगता है उनको। तो बस आते हैं सारे खाने के लिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व ना हो श्रेष्ठ होता है। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी, आजकल क्या हो रहा है, आधुनिक प्रजातंत्र में चोर तथा उच्चक के जनमत यानी वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। आज क्या हो रहा है, हम सब वोट देते हैं और वो वोट लेने वाले भी कोई है ना इतने प्रशिक्षित नहीं होते हैं, संस्कृत नहीं होते हैं, उनको कुछ नहीं खबर होती है, न शास्त्रों का ज्ञान होता है और न ही भगवान के भक्त होते हैं। तो वो चोर उचक के आते हैं, वोट लेते हैं, गोलमाल करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर क्या होता है बताइए। जिस जनता ने उन्हें वोट देकर राजा बनाया उन्हीं का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत है कि महाराजा परीक्षित कैसे एक छत्र राज्य के उन्मूलन थे। जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी अति विज्ञापित प्रजातंत्र में सुखी नहीं रहती। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो प्रजातंत्र है, जो जमहूरियत जिसको कहा जाता है, इसमें जनता खुश नहीं होती है, क्योंकि वो राजा इस योग्य ही नहीं होता है कि उसे राजा बनाया जाए। तो अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के प्रमाणों का वर्णन किया जाएगा। आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या होता है। ये सूत गोस्वामी के द्वारा वो शमी ऋषि के श्लोकास हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि अगर राजा नहीं हो, राजा विहीन प्रशासनों का क्या परिणाम होगा, उसके विषय में बता रहे हैं श्लोक नंबर 44 में। कृपया उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तदध्यन पापमुपैत्यन नन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वासो विलुम्पकात् परस्परं नन्ति शपन्ति विञ्जति पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वोजना। तदध्यन पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वासो विलुम्पकात् परस्परं नन्ति शपन्ति विञ्जति पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वोजन। तदध्यनः पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वासो विलुम्पकात् परस्परं नन्ति शपन्ति विञ्जति पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वोजन। तदध्य, तद मतलब इस कारण से, अद्य आज से, क्योंकि आपने महाराजा को तो श्राप दे दिया, तो आज से न का मतलब होता है हम लोगों को। पापम उपेत्य नन वयम, पापम बहुत बड़ा पाप उपैत्य चढ़ेगा। और क्यों चढ़ेगा, क्योंकि यन्नष्ट नाथस्य, जब राजा का नाश हो जाता है, जब राजा चले जाते हैं तो क्या होता है, वसुर विलुपंकत, वसु मतलब संपत्ति और विलुम्पकात का मतलब होता है लूट। सब लोग, क्योंकि राजा नहीं होगा, चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, सब लोगों की संपत्ति परस्परम एक दूसरे से क्या करेंगे, ग्रंथि शपंती, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को क्षति पहुंचाएगा, कोई किसी की संपत्ति लुटेगा। पशुन स्त्री और थान, कोई किसी की पशु जो उनका पशु उनके होंगे उनको लूटेगा, कोई स्त्रियों को छुड़ाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, अर्थात कोई उनका धन लूट लेगा। और पुरुदस्य मोजना, यानी कि सारे जो दस्य का मतलब होता है चोर, पूर्व ज्यादातर सब लोग चोर बन जाएंगे। सब लोग क्योंकि राजा तो है ही नहीं, उनको पूछने वाला कोई होगा ही नहीं, सब चोर आपस में एक दूसरे की संपत्ति को लूटेंगे, एक दूसरे को घायल करेंगे, मारेंगे, मतलब सारी जगहों पर पशु राज्य हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा राजा है वो तो रहेगा ही नहीं। अनुवाद, राजा के शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा दूरतों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग मारे तथा घायल किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों का उत्तरदायी होंगे हम सब। हम सब का मतलब ये जैसे लिखा है तदत्य न, ये जो न शब्द है ना, वो क्षमेक ऋषि अपने पुत्र को बोल रहे हैं हम सब ब्राह्मणों के ऊपर ये पाप चढ़ेगा। हालांकि दूसरे ब्राह्मण यहाँ पर नहीं थे, लेकिन एक ब्राह्मण ने इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है एक इतने अच्छे राजा के साथ, तो उसका भुगतान पूरे ब्राह्मण समाज को भुगतना पड़ेगा। तो बोला हम सब ही इसका उत्तरदायित्व तो है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि, ठीक ही, ब्राह्मण जाति को राजा की सरकार का अंत करने के लिए और इस प्रकार तथाकथित प्रजातंत्रियों को जो सामान्यतः राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेर होते हैं अवसर देने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। सही कहा है उसने कि अगर महाराजा परीक्षित राजा बने होते थे तो फिर वो अवश्य एक ना अच्छा राज्य करते थे, और उसके बाद जो प्रजा है उनमें से यदि बाद में भी चुनाव करते तो अच्छा ही, मतलब किसी को अच्छी शिक्षा दी जाती थी उसी तरह से राजा होते, लेकिन ऐसा अवसर तो दिया ही नहीं किसी को, डायरेक्ट से राजा परीक्षित को ना श्राप दे दिया। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अभी उसकी बदली में जो भी हानि होने वाली है, जो सामान्य जनता राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं अवसर देने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी गई? ब्राह्मणों की। ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व न लेकर प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। मतलब कोई भी ये नहीं देखता है कि प्रजा को सुरक्षा प्रदान हो, प्रजा के विषय में कोई नहीं सोचता है, जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व तो कोई नहीं लेता, प्रशासनिक तंत्र को हत्या लेते हैं। बस मुझे हमें इंतजामी जो तंत्र हैं उनको है ना हत्या लेते हैं, और सारे व्यक्ति क्या काम करते हैं? निजी तृप्ति के लिए पद अपना लेते हैं। बस निजी तृप्ति, हमें किस तरह से आनंद आए, कोई ये नहीं देखता कि प्रजा सुखी है, मर रही है, जी रही, कोई नहीं देखता, बस हमें आनंद आना चाहिए। निजी तृप्ति के लिए पद अपना लेते हैं और इस तरह एक राजा के स्थान पर कई राजा बनकर जनता पर कर लगाते रहते हैं। बस हर जगह पर अलग अलग टैक्स लग जाते हैं जनता के ऊपर, और भी जनता ज्यादा दुखी हो जाती है ऐसे राजाओं जमहूरियत में। यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई, श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर भविष्यवाणी के विषय में बता रहे हैं कि अच्छी राजकीय सरकार के ना होने से प्रत्येक व्यक्ति धन पशु स्त्रियों आदि को लूट कर अन्यों के लिए विघ्न उपस्थित करता है, करता रहेगा कि क्योंकि अभी राजा नहीं है तो सब लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की वस्तुएं, एक दूसरे का धन, एक दूसरे की स्त्रियों को, पशुओं को चुराएंगे और दूसरों को तंग करेंगे। विघ्न परस्परम घ्नन्ति शपन्ति वृंजते, सब एक दूसरे को मारेंगे, हानि पहुंचाएंगे, घायल करेंगे, चुराएंगे करेंगे, क्योंकि राजा तो रहा नहीं, तो अब सब लोग इस तरह से चोर उचक्के बन जाएंगे। और इसके बाद जो होगा वो श्लोक नंबर 45 में बताते हैं। वे कहते हैं तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः। ततूर्थ कामा भिनिवेशितात्मनाम शुनाम कपीना इव स्वर्ण संकर तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुत त्रयीमया ततोर्थ कामा भिनिवेशितात्मना शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकर तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुत त्रयीमयः ततोर्थ कामां भिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनां इव वर्ण संकरं तदार्य धर्म प्रविलीयते। तदार्य मतलब उस समय क्या होगा, आर्य धर्म। आर्य धर्म यानी जो सभ्यता, प्रगतिशील सभ्यता है, प्रविलीयते वो समाप्त हो जाएगी। मनुष्यों का धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। कौन सा धर्म? वर्णाश्रमाचार युत स्त्रीमया, जो वेदों में बताया गया है कि किस तरह से समस्त मनुष्यों को वर्ण आश्रम पद्धति के अंदर रहकर प्रगति करनी। अब वर्ण आश्रम धर्म क्या है? वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों को अपना कार्य करना होता है, क्षत्रियों को राज्य संभालना होता है, वैश्य को व्यापार और कृषि करना होता है, शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करनी होती है। ये कोई जन्मजात वर्ण नहीं है, ये तो कर्मों और गुणों के अनुसार हर एक जीव का कोई ना कोई वर्ण होता है और उसको उसी के अनुसार जब वो कार्य करता है तो धीरे 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 प्रगति करता है। वेदों में क्या बताया गया है? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदों में तो यही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, ईश्वरों के ईश्वर है, उनकी भक्ति करनी है। लेकिन आप जिस स्टेज से हो उस स्टेज से आपको किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, कैसे कैसे अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए कृष्ण भक्ति करनी है वो बताया गया। लेकिन जब राजा नहीं होगा अच्छा, जो कि संस्कृत हो, जो कि वेदों का जानने वाला हो, तो मनुष्यों को कभी भी भगवत प्राप्ति को भगवत प्राप्ति के लिए कौन प्रेरित करेगा? कोई, हर कोई क्या करेगा? वर्णाश्रम धर्म जब समाप्त हो जाएगा तब ये थर्ड लाइन लिखी हुई ना, उसको ध्यान से देखिए। ततोर्थ कामा भिनिवेशितात्मना, बस उनका जीवन यही रह जाएगा। क्या? अर्थ कामा। अर्थ कामा मतलब किस तरह से धन अर्जित करूं। अर्थ मतलब धन विकास। काम अभिनिवेशता यानी इंद्रियों की तृप्ति करूं। किस तरह से धन कमाऊं, किस तरह से इंद्रिय तृप्ति करूं, किस तरह से धन कमाऊं, किस तरह से इंद्रिय तृप्ति करूं, यही उसको एक इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से लगने के लिए धन कमाना है। उनका मनुष्यों का जीवन ही यही रह जाएगा। आज हम देखते हैं एक सभ्य व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं ना, उसको किसको बोलते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर तरीके से इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, हम बोलते देखो कितना सक्सेस व्यक्ति है ना? और जो भक्त होता है, जिसके पास धन नहीं होता, जिसके पास जाने के लिए किधर जाते हैं तो गाड़ी नहीं होती है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, तो हम बोलते बेचारे देखो कैसी हालत है इनकी, है ना, कुछ कमाते वमाते नहीं है, खाने पीने के लिए भी उनके पास नहीं है, तो इनकी तो लाइफ समझो अनसक्सेस है, कुछ भी नहीं प्राप्त किया जीवन में, तो हमें यही लगता है ना। लेकिन वास्तविक प्रगति क्या होता है कि किस तरह से हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ के जन्म मरण के चक्कर से बचें, बारंबार इस दुखों भरे पृथ्वी इस संसार में आने से बचें, ये जो 14 लोक हैं जिसमें हमारा भ्रमण चला रहता है, कभी उस लोक में, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी यहाँ, हम लोग तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को सहन कर रहे हैं, बारंबार इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आनंद लेने के लिए, और स्ट्रगल करने के बाद जब आनंद की स्टेज आती है, पुनः मृत्यु हो जाती है, वापिस शुरू करते हैं पहले टके से, कहाँ से, एक रुपये से शुरू करते हैं, मेरे पास आज कितने जमा हो। तो ये इस तरह से हमारा आत्मा को तड़पने के लिए नहीं बनना। ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपनी आत्मा की इस दुर्गति को समाप्त कर सकते हैं। तो वो तभी संभव है जब एक अच्छा सुशिक्षित राजा जो होगा वो अपनी प्रजा को इस तरह से शिक्षा देगा। लेकिन अभी राजा मर जाएगा तो फिर क्या होगा, सब लोग अधर्मी हो जाएंगे, वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा, ततोर्थ कामा निवेशितात्मना, सब लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अधिक से अधिक जमा करने में ही आकृष्ट होंगे। और जीवन कैसा होगा जीवों का, यहाँ पर शमीक मुनि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किस तरह का जीवन होगा। शूनाम कपीनाम इव वर्ण संकर, शूनाम कहते कुत्तों को और कपीनाम अर्थात वानरों को, बंदरों को, कुत्तों और वानरों की तरह। इव वर्ण संकर, बस सब लोग अवांछित संतानी उत्पन्न करेंगे, उनको कुछ इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त दिखेगा नहीं। जिस तरह कुत्ते निर्लज्जता के साथ इंद्र तृप्ति करने को ही अपना एकमात्र आनंद समझेंगे, तो ऐसा जो अशिक्षित व्यक्ति मनुष्य भी होगा वो भी यही सोचेगा कि काम वासना को पूरा करने के अतिरिक्त और कोई सक्सेस नहीं है लाइफ की, और कुछ नहीं है। तो कुत्तों और बंदरों की तरह, निर्लज्जता की तरह, बेशर्मों की तरह केवल अवांछित संतान उत्पन्न करने में ही उनको एकमात्र अपना गोल यही लगेगा, किस तरह से मैं अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करूं। अनुवाद देखिए, उस समय सामान्य लोग जाति यानी वर्ण तथा समाज व्यवस्था यानी आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। यानी जो शास्त्रों में आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से आपको अपना कार्य करना है, वो सारे गुण और कर्मों के अनुसार जो उसको वर्ण और आश्रम दिए गए, वो सब वर्ण आश्रम समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकर्षित होंगे, ततोर्थ कामा विनिवेशितात्मना, और बस उनका यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर इंद्र तृप्ति कर। फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित जनसंख्या हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजा के ना रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंध से उत्पन्न सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा, आज अगर हम देखते हैं जो प्रगतिशील कंट्रीज होते हैं उनमें इंद्र तृप्ति को एकदम अलाउट किया गया है, चाहो कुत्तों की तरह जो करना है जिसके साथ करना है करो। तो ऐसा ही है क्योंकि शास्त्र को अध्ययन करते नहीं है, वेदों शास्त्रों के विषय में कुछ पता ही नहीं है, अवैध संबंध कितना अपराध और पापमयी कार्य है उसके विषय में सोचते नहीं है, तो यहाँ पर वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से बहुत दूर भटक जाएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी वैदिक सभ्यता के विषय में बता रहे हैं कि वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य क्या है, क्या करना है, ये वेदों में बताया गया है कि आपको जीवन में किस तरह से प्रगति करनी है। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, न जरा है और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने, किंतु भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। शास्त्रों में हमें ये बताया जाता है, वेदों में ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन काम इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है, धन अर्जित करने के लिए नहीं मिला है, भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जन्म तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जन्म तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोगों को समाप्त करने के लिए मिला है। ये मनुष्य धर्म तो अपने धर्म को प्राप्त पूरा करके, जो भी धर्म है आपके, जो भी आप जिस भी वर्ण में हो, जिस भी आश्रम में हो, अपने धर्मों को पूरा करके, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, क्यों करना है धर्मों को पूरा, ताकि अपवर्ग को प्राप्त करो, भगवान के लोक को प्राप्त करो। इसीलिए आपको जन्म, ये मनुष्य जन्म मिला। लेकिन कोई शास्त्र पढ़ तो, शास्त्र तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई शास्त्रों के अनुसार कार्य करेगा ही नहीं, तो फिर कुत्तों के जैसा ही उनका जीवन हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश वेदों में दिया जाता है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, गुण के आधार पर जाति प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये जो चार वर्ण और आश्रम है वो मया सृष्टम, मैंने बना है। भगवान की बनाए हुए किसी भी चीज में कोई भी गलती नहीं होती है। भगवान ने बनाया है वर्ण आश्रम धर्म, तो उसी के द्वारा ही जीवों का कल्याण होने वाला है। परंतु आज वर्णाश्रम धर्म को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि ये क्यों, किसी को इतना शूद्र क्यों मानते हैं, किसी को ब्राह्मण क्यों, उनकी क्वालिटीज ऐसी हैं, हम नहीं भी मानेंगे तो भी वो ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, आप उसको ब्राह्मण का नाम मत दो, लेकिन किसी भी समाज में जाओगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि शास्त्रों को, वेदों को समझने वाला होगा, उसके अनुसार ज्ञान देने वाला होगा। अगर आप उसको क्षत्रिय नहीं भी मानते हो, फिर भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि क्षत्रिय बनता है, मतलब दूसरों को क्षति से रोकता है। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका काम जो है कृषि, गौरक्षण, वाणिज्यम, उसका उसका आकर्षण जो होगा वो बिजनेस करने में, व्यापार करने में, अथवा खेतीबाड़ी करने में होगा। हम माने या ना माने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना वो ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं, ना क्षत्रिय का कार्य कर सकते हैं, ना ही वैश्य का कार्य कर सकते हो, वो शूद्र हैं, तो उनको अवश्य उन तीनों वर्णों की सेवा करनी है। लेकिन आज का जो समाज है वो सबको शूद्र बनने की शिक्षा देते, तुम ब्राह्मण हो तो भी शूद्र बनो, तो भी तुम सेवा करो, क्षत्रिय हो तो भी शूद्र बनो, शूद्र हो तो भी शूद्र बनो, वैश्य हो तो भी शूद्र बनो, सब लोग को शूद्र बना दिया है और भगवान के बनाए हुए वर्णाश्रम धर्म को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। वैदिक जीवन शैली हमें बताती है कि मनुष्य को किस तरह से जीना है। आहार निद्रा वाय मैथुनम सामान्य एतत् पशु फिर नराना, पशुओं में और नरों में एक ही जैसा, यदि पशु भी सिर्फ किस तरह से खाएं, किस तरह से इंद्रिय तृप्ति करें, किस तरह से बच्चे पैदा करके घर बनाएं और मर जाएं, यदि मनुष्य भी यही काम आज का कर रहा है तो फिर क्या अंतर रह जाएगा मनुष्य और पशुओं में। वैदिक संस्कृति हमें बताती है कि मनुष्य बने हो तो मनुष्य को किस तरह से अपने जीवन को बिताना चाहिए और किस तरह से शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। कुत्तों और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने की कभी अनुमति नहीं देते हैं वैदिक शास्त्र। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्र तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अदम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनतंत्र को का गौण उत्पात है। ये क्यों हो रहा है आज इंद्र तृप्ति? क्योंकि जो अच्छे सभ्य राजा हैं वो नहीं है, जो कि खुद शास्त्रीय ज्ञान को अर्जित करते हैं और उनकी पहले शिक्षा होती है, उनके बाद उनको राज्य प्राप्त होता है। ये सब ईश्वरविहीन है, राजा से रहित जनतंत्र, यानी कि हम लोगों ने खुद उसको वोट दे दिया। उसका भी पूछा उससे, आपको पता है शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? किसी राजा से पूछा जाता है कि भाई आपको पता है भगवान कौन है? उसको तो ये भी नहीं पता होगा भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती। तो ये सब क्यों हो रहा है? ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनतंत्र का गौण उत्पाद है। तो क्या होता है? श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत खास बात बताएं। अतएव लोगों को अपने द्वारा चुने गए अदम प्रशासन के लिए चूं चपड़ नहीं करनी। आज अगर वो दुखी हैं, तो राजा किसने चुना है? खुद ही उन्होंने चुना है, तो बर्दाश्त करो उसको, है ना? उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि वो जो भी करेगा हम लोगों को उसी को बर्दाश्त, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही तो उसको राजा बनाया है, खुद ही तो गवर्नमेंट हमारे वोटों के द्वारा आई है। तो वो जो भी करे ना उसको बर्दाश्त करना है, उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा अपना ही चुनाव है ये। अब शमीक ऋषि महाराजा परीक्षित के गुणों के विषय में बता रहे हैं कि वो अगर खाली अच्छे राजा भी होते ना तो भी उनको श्राप नहीं देना चाहिए था। खाली एक अच्छे राजा जो सभ्य हैं, जो अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ना अपने राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह जो पालना करते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो राजा भी कभी श्राप के योग्य नहीं होता। लेकिन महाराजा परीक्षित तो राजा होते हुए भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज थी, और केवल इतनी थोड़ी सी गलती के लिए उनको तुमने मृत्यु दंड दे दिया। वे कहते हैं धर्म पालो नरपति सतु सम्राट्री हज्रवा साक्षान महा भागवतो राजशिर हयमेधया श्रुति क्षम श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमर्हति धर्मपालो नरपति सतु सम्राट्रिहश्रवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् श्रुति क्षमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमर्हति धर्मपालो नरपति सतु सम्राट् बृहश्रवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् श्रुति क्षमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमर्हति धर्मपालो नरपति, यानी धर्म का पालन करने वाला नरपति जो राजा है, सतुत सम्राट बृहश्रवा, ये राजा तो अत्यधिक प्रसिद्ध है, धर्म पालन करने वाला है, इतना सुंदर राज्य चलाने वाला जो बहुत ही प्रसिद्ध है, हर जगह पर ऐसे राजा की प्रशंसा होती है, ऐसा राजा। और उसके साथ साथ साक्षात महाभागवतो, ये साक्षात भगवान के परम भक्त हैं, और साथ में क्या है, राजर्षि, केवल राजा नहीं है, राजा के साथ साथ ऋषि हैं, अर्थात वैराग्य का भाव है उनके अंदर। राजर्षि, उन्होंने क्या किया, हयमेधयात, हय किसको बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं, हयमेधयात यानी अश्वमेध यज्ञ उसने बहुत सारे किए हैं, ऐसा भगवान का परम भक्त, इतने सारे अश्वमेध यज्ञ करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, इतना प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो राजा है, श्रुति क्षम युतो दीनो, उसको श्रुति यानी भूख लगी हुई थी, तृष्णा थी, प्यास लगी हुई थी, और उसके साथ साथ श्रम युतो, बहुत थके हुए थे, विपत्ति, उनके ऊपर विपत्ति थी, वो थक गए थे, कंठ सूख रहा था, मर रहे थे जल के प्यास से, और उस समय उन्होंने मुझसे पानी मांगा। उस समय तो कोई ऐसी अवस्था में तो कोई शत्रु भी पानी मांगे तो उसके लिए भी मुझे अपनी समाधि का त्याग करना चाहिए था, और उनको मैंने समाधि छोड़ के पानी नहीं दिया, और आपने क्या किया, नैवासम शापम अर्हति, उसको शाप दे दिया। नैवासम, उसको कभी भी ऐसे स्मत हमारे द्वारा ऐसा शाप कभी भी नहीं देना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। अनुवाद, सम्राट परीक्षित पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत सुप्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत यानी राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह शाप दे जाने के योग्य नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राजपद संबंधी सामान्य आचार संहित बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, मुनि शमीक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे हैं। अब जो बात बता रहे हैं वो बहुत विशेष है। राजा परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया है। धर्म पालो नरपति, धर्म का पालन करने वाले राजा, और इतने बृहत्श्रवा सम्राट बृहत्श्रवा इतने प्रसिद्ध हैं, साक्षात महाभागवत भगवान के शुद्ध भक्त, राजर्षि हयमेधया, उसने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ किए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अत्यंत विख्यात शासक थे उनको, महाराजा परीक्षित के विशिष्ट गुणों के यहाँ पर संक्षिप्त में बताया। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो अत्यंत ही विख्यात शासक थे, है ना, बृहत्श्रवा। राजा भी बहुत विख्यात थे जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार पालन किया, धर्म पालो। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं श्रीमद भगवद गीता 18.43 में। क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान हैं। 18.43 में भगवान कहते हैं, शौर्यम तेजो दितिर्दाक्ष्यम युद्धि चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम सबसे ज्यादा वीरता, तेज यानी शक्ति, धीतिर संकल्प में धैर्य, दाक्षम दक्षता, एक्सपर्ट युद्धे प्रिय युद्धे यानी युद्ध में, अपि पलायनम यानी युद्ध से कभी भी विमुख न होने वाला, दानम उदारता, ईश्वर भावश्च यानी भगवान का भक्त जो खुद को भगवान का प्रतिनिधि समझकर प्रजा की सुरक्षा करे। ये सारे के सारे गुण श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे भगवान के बड़े भारी भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। ऐसे राजा को जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो शाप देना कदापि उचित नहीं था। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह शमीक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराजा परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक श्राप दिया गया है। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधपतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर शमीक ऋषि अपने पुत्र को बता रहे हैं कि अब महाराजा परीक्षित के मरने के बाद जो भी क्षति पहुंचेगी उसका उत्तरदायित्व हम हैं, क्योंकि अब तो सब लोग जो हैं वो चोर बन जाएंगे, एक दूसरे की स्त्रियों को, उनके पशुओं को, उनके धन को, सबको चुराएंगे, क्योंकि राजा तो होगा ही नहीं, तो वर्णाश्रम धर्म समाप्त तो हो जाएगा। मनुष्य जो है वो कुत्ते और सुअरों की तरह, बंदरों की तरह अपना केवल इंद्रिय तृप्ति ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर जीवन को व्यतीत करेंगे। ऐसे अच्छे और भगवान के भक्त राजा को तुमने श्राप दे दिया, इस सब का, इसका सारा जो अपराध लगने वाला है उसका सबका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आएगा, तो हमने बहुत बहुत बुरा कार्य किया है। इसके बाद में अभी शमीक ऋषि जो हैं वो बहुत बहुत पश्चाताप करेंगे, भगवान से बहुत क्षमा याचना करेंगे कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, कृपया हमें क्षमा कीजिए। परंतु जैसा कि श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि ये सब तो भगवान की योजना है, लेकिन ये सब योजना के द्वारा भी क्षति तो हो ही रही है ना, तो भगवान की योजना ये है कि कलयुग आ जाए और हम जैसे पतित जीव जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं समझते, शास्त्रों को नहीं समझते, वेदों को नहीं समझते, वो भगवान के पवित्र नाम का जप करके, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके भगवान को प्राप्त करने, कीर्तना देव कृष्ण से, क्योंकि भगवान जानते हैं कलेर दोषे निदे राजन यस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है कलयुग में, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगो परम रचित, के कलयुग में यदि हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है, तो इतनी सरलता से हम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान जानते हैं कि कलयुग के जीवों से अब कुछ और होने वाला नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि महाराज परीक्षित मेरे पास आ जाएं और कलयुग के बाकी जितने भी जीव हैं उनको इतनी सरल विधि से मुझ तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो, और हम जैसे पतित जीवों का इतना दुर्भाग्य है कि इतनी सरलता से दुर्दैव अमीद शमिहा जनीना अनुराग, इतनी सरलता से मिलने वाले भगवान के प्रति भी हमारा कोई आकर्षण नहीं है, भगवान नाम के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए ताकि हम भगवान के पवित्र नाम की ओर आकर्षित हो गए। पर कथा के द्वारा जब हृदय पवित्र होता है तो नाम उच्चारण करने के लिए, नाम को जप करने के लिए हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, तो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे और अधिक से अधिक प्रेम से भगवान का नाम लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।